ब्रह्मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् अस्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणे रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद् वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणम् लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्योत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 8 अध्याय 11 शीर्षक है इंद्र द्वारा अस्त्रों का संहार। कल हम लोग इस 11 अध्याय के 40वें श्लोक को श्रवण कर रहे थे। इकतालीस बयालीस तैतालीस चौवालीस पैंतालीस छियालीस और सैतालीस इन श्लोकों में श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य नहीं है, तो जिन श्लोकों में तात्पर्य नहीं रहता है उन श्लोकों पर भक्तगण पढ़ करके आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम इन श्लोकों को पढ़ लेते हैं, तत्पश्चात हम फिर 48 श्लोक को पुनरावृत्ति करेंगे। श्लोक संख्या 41। गंधर्व मुख्यो जगतुर्विश्वासु परावस देव दुंदो भयो ने दूर तक्यो नृतुर्मुदा। विश्वासु तथा प्रवासु नामक दो गंधर्व प्रमुखों ने अति प्रसन्नता में गीत गाए। देवताओं ने दुदुम्भियां बजाई और अप्सराओं ने हर्षित होकर के नृत्य किया। जब इंद्र ने अपने हथियार से नमुची का सिर काट दिया झाग से, तब ये देवता लोग पुष्पों की वृष्टि की हर्षित होकर वाद्य बजाए। अन्येऽपेवं प्रतिद्वन्द्वात् वाव्यग्निर्वरुणादयः सुदयामासुरसुरान् मृगान् केसरीणोऽवथा। वायु अग्नि वरुण इत्यादि देवता अपने विरोधी असुरों को उसी तरह मारने लगे जिस तरह जंगल में हिरणों को सिंह मारते हैं। ब्रह्मणा प्रेषितो देवान् देवर्षि नारदो नृप वार्यामास विबोधान् दृष्ट्वा दानवसंक्षयम्। हे राजन, जब ब्रह्मा ने देखा कि दानवों का पूर्ण संहार तुरंत होने वाला है तो उन्होंने नारद द्वारा संदेश भेजा जो युद्ध रुकवाने के लिए देवताओं के समक्ष गए। श्री नारद उवाच भवद्भिर्मृतं प्राप्तं नारायण भुजाश्रय श्रियासमेधिता सर्व उपारमत विग्रहात्। महामुनि नारद ने कहा, तुम सारे देवता भगवान नारायण की भुजाओं द्वारा सुरक्षित हो और उनकी कृपा से तुम सबको अमृत प्राप्त हुआ है। लक्ष्मी जी की कृपा से तुम हर तरह से गौरवान्वित हुए हो, अतः अब यह लड़ाई बंद करो। श्री शुक उवाच संयम्य मन्योरम्भम संयम्य मन्योरम्भम मानियंतो मुनिर्वच उपगीय मानान उचैर्ययो सर्वे त्रिविष्टपम। श्री पाद सुखदेव गोस्वामी ने कहा, नारद मुनि के वचनों को मानकर देवताओं ने अपना क्रोध त्याग दिया और लड़ाई बंद कर दी। वे अपने अनुयायियों द्वारा प्रशंसित होकर स्वर्गलोक को लौट गए। ये वशिष्ठा रणे तस्मिन् नारदानुमतेन ते वलिं विपन्नमादाय अस्तम गिरिम उपागमन। नारद मुनि के आदेशानुसार युद्ध क्षेत्र में जितने भी असुर बचे थे वे सब अली महाराज को, जिनकी अवस्था अत्यंत गंभीर थी, अस्तगिरी ले गए। तन्ना विनष्टा व्यान विद्यमान शिरोधरान उष्णा जीवयामास संजीवन्यास विद्या। उस पर्वत पर शुक्राचार्य ने उन सारे मृत असुर सैनिकों को जिनके सिर धड़ और हाथ पांव कटे नहीं थे जीवित कर दिया। उन्होंने अपने संजीवनी मंत्र के द्वारा यह सब किया। 48 श्लोक बलि है, पुनः बोलिए, बलि है च उष्णसा अस्पृष्ट है प्रत्यापन इंद्रिय स्मृति है पराजित है अपि न अखिद्यात लोक तत्व विचक्षण है। बलिश्चोषण सास्पृष्ट है बलिश्चोषण सापृष्ट है प्रत्यापनेन्द्रिय स्मृति है प्रत्यापनेन्द्रिय स्मृति पराजितोपि नाखिद्यत पराजितोपि नाखिद्यत लोकतत्व विचक्षण है लोकतत्व विचक्षण है। बलिश्चोषण सा अस्पृष्ट है प्रत्यापन्नेन्द्रिय स्मृति है पराजितोपि नाखिद्यत लोकतत्व विचक्षण है बलिश्चोषण सास्पृष्ट है प्रत्यापन्नेन्द्रिय स्मृति है पराजितोपि नाखिद्यात् लोकतत्व विचक्षण है। पुनरावृत्ति करें। बस हो गया। वले है महाराज बलि चा भी उसनसा शुक्राचार्य द्वारा असृष्ट है अस्पर्श प्रत्यापन पुनः जीवित किया गया। इंद्रिय स्मृति है इंद्रियों के कार्यों तथा स्मृति की अनुभूति। पराजिता है हरा दिया गया। अपि यद्यपि न अखिद्यात् शोक नहीं किया। लोक तत्व विचक्षण है संसारी कार्यों में अत्यंत अनुभवी होने के कारण। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद तथा तात्पर्य अनुवाद। बलि महाराज वैश्विक कार्यों में अत्यंत अनुभवी थे। जब शुक्राचार्य की कृपा से उन्हें होश आया और उनकी स्मृति लौट आई तो जो कुछ भी हो चुका था उसे वे समझ गए। इसलिए पराजित होने पर भी उन्हें शोक नहीं हुआ। पुनरावृत्ति करें। जब बलि महाराज वैश्विक कार्यों में अर्थात संसारिक कार्यों में अत्यंत अनुभवी थे। जब शुक्राचार्य की कृपा से उन्हें होश आया और उनकी स्मृति लौट आई तो जो कुछ भी हो चुका था उसे वे समझ गए। इसलिए पराजित होने पर भी उन्हें शोक नहीं हुआ। तात्पर्य यह महत्वपूर्ण बात है कि बलि महाराज को यहां पर अत्यंत अनुभवी कहा गया है। यद्यपि वे हार गए थे तथापि उन्हें तनिक भी खेद न था क्योंकि वे जानते थे कि भगवान की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं घटित हो सकता। चूंकि वे एक भक्त थे इस कारण उन्होंने बिना संताप के अपनी पराजय स्वीकार की। जैसा कि भगवद गीता 2:47 में भगवान ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्थे मा फलेषु कदाचन। कृष्ण भावना भावित हर व्यक्ति को हार जीत की प्रवाह न करके अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। मनुष्य को कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु द्वारा आदेशित अपना कर्तव्य करना चाहिए। आनुकुल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। उत्तम भक्ति में मनुष्य सदा कृष्ण की इच्छा तथा आदेशों का पालन करता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की चार। इस 11 अध्याय का ये अंतिम श्लोक है। बलिश्चो सनसा स्पृष्ट प्रत्यापनेन्द्र स्मृति है। पराजितोपि नाखिद्यत लोकतत्व विचक्षण है। प्रस्तुत श्लोक में बलि महाराज के अत्यंत अनुभवी होने का वर्णन है। और इस युद्ध में हार गए थे, फिर भी उस हार से इन्हें कोई शोक नहीं हुआ, क्योंकि ये भगवान के परम प्रिय भक्त थे। भक्तों को सदैव कृष्ण की इच्छा तथा आदेशों का पालन करना चाहिए। तो बलि महाराज एक अनुभवी व्यक्ति थे। कल आप श्रवण कर रहे थे कि जब नमुची का वध हो गया तो शुक्राचार्य जी जितने भी असुर थे सब मारे गए समुद्र मंथन के बाद। तो सारे असुर अपने गुरु शुक्राचार्य जी के पास गए और शुक्राचार्य जी मृत संजीवनी विद्या जानते थे भगवान शिव जी की कृपा से। वे तप करके मृत संजीवनी विद्या शिव जी से प्राप्त किए थे। तो उस विद्या से मरे हुए व्यक्ति को जिला देते थे। तो जितने भी असुर बचे थे जो मरे नहीं थे, तो वे असुर बलि महाराज को जिनकी अवस्था अत्यंत गंभीर थी अस्तगिरी ले गए। अस्तगिरी मतलब पर्वत पर ले गए जहां शुक्राचार्य जी रहते थे। आगे वर्णन है कि बलि महाराज को जब जीवित कर दिए तो बलि महाराज अपना सर्वस्व शुक्राचार्य जी को अर्पण कर दिए। तो यहां पर यह वर्णन है कि बलि महाराज बहुत अनुभवी व्यक्ति थे। ये विरुचन महाराज के पुत्र थे। प्रहलाद जी के पुत्र हुए विरुचन और विरुचन के पुत्र हुए बलि महाराज और बलि महाराज के पुत्र हुए बाणासुर, जो 1000 भुजाओं से मृदंग वाद्य बजाकर शिव जी को खुश कर लिया था और शिव जी उनके रक्षक बन बैठे थे। जैसे प्रहलाद महाराज जी भगवत गुणों से समन्वित थे, दयालु थे, कृपालु थे, तो उन्हीं के पुत्र थे विरोचन महाराज। तो विरोचन जी में भी वो गुण आया था। जैसे प्रहलाद जी ब्राह्मण भक्त थे, वैसे विरोचन जी भी ब्राह्मण भक्ति से युक्त थे। ये वैष्णवों को ब्राह्मणों को सम्मानित करते थे। इस स्वर्ग लोक में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ब्रह्मा जी के पास रहे थे और काफी शक्तिशाली हो गए थे। देवता लोग विरोचन को हरा नहीं सकते थे क्योंकि धर्म से युक्त थे। असुर कुल में इनका जन्म हुआ है लेकिन ये भी तपस्या से शक्तिशाली थे। इंद्र ने सोचा कि ये दैत्य हैं, इनको हम कैसे हरा सकें। युद्ध हुआ लेकिन युद्ध में भी हार जाते थे। तब देवता लोग अपने गुरु बृहस्पति जी के पास गए, इंद्र बृहस्पति जी के पास गए और कहे, हे गुरुदेव, ये विरुचन कैसे हारेगा, कोई उपाय बताइए, इसके वध का कोई उपाय बताइए, इसके रहते हम लोग असुरों पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। तब बृहस्पति जी ने उपाय बताया कि ये कहीं उपाय है, ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके इंद्र को बताया, विरोचन जी के पास जाओ और दान में उनकी आयाऊ को मांग लो, उनके सिर को मांग लो, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो इंद्र ब्राह्मण का शरीर धारण करके विरोचन जी के पास गए और विरोचन जी ने उन ब्राह्मण का स्वागत किया। जय श्री श्री गौरनिताय की जय, श्री श्री राधा रास बिहारी जी की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। विरोचन जी ने उस ब्राह्मण देवता का स्वागत किया। ये हमारी वैदिक परंपरा है, किसी के आज भी ब्राह्मण आते हैं, कोई गुरु आते हैं, उनके लोग चरण पखारते हैं, ये वैदिक शास्त्र की मर्यादा है। जैसे भगवान कृष्ण ने सुदामा जी का चरण पखारा था, तो बलि महाराज ने उस देवता का स्वागत किया और कहे, हे विप्रदेव, किस कारण आपका यहां सुभागमन हुआ, अपने सुभागमन का कारण बताइए, आपको क्या चाहिए, आपकी जो इच्छा हो सो मांग लीजिए। तब इंद्रदेव ने कहा, वो तो ब्राह्मण के स्वरूप में ही थे, छिप कर गए थे, कहे कि मैं आपकी आयु चाहता हूं। आयु का मतलब हो गया मैं आपका सिर चाहता हूं, मैं आपका मरण चाहता हूं, अपना सिर काटकर मुझे दे दीजिए। जब उनके सिर को उद्दान में मांगे तो विरोचन जी तुरंत तलवार उठाए और अपना सिर काट करके इंद्र को दे दिए। ऐसे दानी थे विरोचन जी, देवताओं के मांगने पर अपने सिर को भी प्रदान कर दिए। तो ऐसे दानी और ब्राह्मण सेवित पुत्र के पुत्र थे बलि महाराज, विरोचन के पुत्र थे बलि महाराज, जिनकी कीर्ति सारी दुनिया में व्याप्त है। तो बलि महाराज भी बहुत बड़े दानी थे। बलि महाराज के जीवन में, बलि महाराज की जीवनी के बारे में बताया जाता है कि पूर्व जन्म में ये जुआरी थे और दैववश प्रारब्ध के अनुसार ये विरोचन जी के पुत्र बने। तो इनमें भी वो गुण था, पिता का अंश पुत्र में आता है। तो जैसे प्रहलाद के पुत्र विरोचन और इनकी पत्नी का नाम था सुरोचना, बलि महाराज की पत्नी का नाम सुरोचना था, और जो और इनके पुत्र बलि महाराज हुए तो दैत्य कुल को उजाला करने के लिए इनका जन्म हुआ था। तो बलि महाराज बहुत बड़े दानी थे। आप सभी जानते हैं कि जब दुर्वासा मुनि के साथ से इंद्र की शक्ति नष्ट हो गई, उनका स्तर जो नष्ट हो गया, तब ये स्वर्ग पर धावा बोल दिए। कौन? बलि महाराज। युद्ध में तो हार गए, आगे कथा आएगी। लेकिन ब्राह्मणों की कृपा से ये शक्तिशाली हो गए थे। देवता जब पराजित हो गए तो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, स्तुति से भगवान प्रसन्न हो गए और प्रकट हुए और उनके दुखों को श्रवण किए और श्रवण करके उन्होंने समुद्र मंथन का आदेश दिया। समुद्र मंथन हुआ, उससे 14 रत्न निकले और अमृत भी निकला अंत में। देवता लोग छीन लिए, दानव लोग छीन लिए और देवताओं को नहीं मिला। तो भगवान वामन अवतार लेकर के पुनः उन्हें, इसके बाद बलि महाराज को शुक्राचार्य जी ने मृत्युंजय विद्या से जीवित कर दिया। तो बलि महाराज पुनः स्वर्ग पर आक्रमण किए। अमृत पीने के बाद भी देवता लोग हार गए, भागना पड़ा उनको। वो देवताओं का आहार होता है अमृत। अमृत के पीने के बावजूद भी वे निर्भय नहीं रहते, क्योंकि वो सब तुच्छ अमृत है। शरीर रिष्ट पुष्ट होता है, दीर्घजीवी बनते हैं, लेकिन अंतोगत्वा स्वर्ग से नीचे आना पड़ता है। देवता लोग भगवान का शरण लेते हैं, असुर भगवान का शरण नहीं लेते, इसलिए उनको अमृत नहीं मिला था। तो बलि महाराज अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण कर दिए, ऐसे दानी थे बलि महाराज। और जब वे सर्वस्व अर्पण कर दिए तो भगवान उनके पहरेदार बन गए। और बलि महाराज की जीवनी से ये भी शिक्षा मिलती है, इनके गुरु शुक्राचार्य जी थे, जब वे दान देने के लिए तैयार हो गए वामन भगवान को, तो शुक्राचार्य जी मना किए, लेकिन फिर भी ये अपने गुरु की बात को नहीं माने। जो भगवान को दान देने से मना करे तो ये गुरु का कर्तव्य नहीं, इसलिए उन्होंने नहीं माना। क्यों? क्योंकि बहुत बुद्धिमान थे, अनुभवी थे, ये जानते थे, गीता में भगवान का प्रवचन है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापे भो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अगर कोई गुरु को त्याग करके भी मेरे शरण में आएगा, सर्व पापे भो मतलब सभी प्रकार के पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। तो बलि महाराज ने विशेष धर्म का पालन किया, सामान्य धर्म को त्याग दिया। सामान्य धर्म है अपने माता पिता के आदेशों का पालन करना, ये सामान्य धर्म है, और भगवान के आदेशों का पालन करना ये विशेष धर्म है। तो विशेष धर्म का पालन करने से कोई पाप नहीं लगता है। जैसे ब्रह्मा जी के चारों पुत्र हैं, ब्रह्मा जी ने अपने मन से उत्पन्न किया और बोले कि सृष्टि करो, बोले कि हम सृष्टि नहीं करेंगे, हम गृहस्थ धर्म को नहीं अपनाएंगे, हम प्रवृत्ति मार्ग को नहीं स्वीकार करेंगे, निवृत्ति मार्ग को स्वीकार करेंगे। ब्रह्मा अपने पिता के आदेश को ठुकरा दिए, तो क्या इनको पाप लगा? नहीं, क्योंकि ये सर्वोच्च धर्म का पालन किया। ब्रह्मा जी के भी पिता भगवान कृष्ण है, तो भगवान के गीता में आदेश है, अहम त्वाम सर्व पापे भू, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दू। जदु महाराज अयाति जी के पुत्र थे, अयाति महाराज ने जवानी मांगा अपने जदु बेटे से, तो जदु महाराज ने जवानी नहीं दिए, क्या उनको पाप लगा? नहीं, उसी कुल में तो भगवान कृष्ण है, जद कुल में, वो परम धर्म को जानते थे कि बेटे की जवानी लेकर मां के साथ उपभोग करेंगे। बेटे की जवानी लेकर के कोई पिता मां के साथ उपभोग करे तो बहुत बड़ा पाप होगा, और मैं क्यों बुढ़ापा को स्वीकार करूं? ये शरीर नश्वर है, कभी भी जा सकता है, ये तो धर्म के लिए मिला हुआ है, इसलिए वे जवानी नहीं दिए। शर्मिष्ठा के पुत्र पुरु ने जवानी दी, 1000 विषयों का भोग किए, फिर जवानी लौटा दिए। तो यदु महाराज जब अपने पिता की बात को नहीं माने तो उनके ऊपर कोई पाप नहीं लगा। भगवान कृष्ण खुद जदु महाराज की उद्धव जी से प्रशंसा करते हैं, हे उद्धव जी, जदु महाराज परम भक्त, वैष्णव एवं ब्राह्मणों के परम भक्त थे, वे आत्मा परमात्मा को जानते थे, ब्रह्म तत्व को जानते थे, एक पवित्र आत्मा थे, इसलिए भगवान उस जदकुल में जन्म ली। भगवान का जादव नाम पड़ा, जदवंशी कहलाए, जादव आए माधव आए केशव आए नमः। तो उनके ऊपर कोई पाप नहीं लगा। गोपियां अपने पतियों का आदेश छोड़कर के भगवान के शरण में आई, क्या उन्हें पाप लगा? नहीं लगा, कि भगवान सबके पति हैं, आत्मा के पति भगवान हैं। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, यज्ञ पति, श्री पति, प्रजापति, धियापति, लोकपति, धरापति, सबके स्वामी तो भगवान है, पृथ्वी के पति भगवान है, लक्ष्मी के पति भगवान है, आत्मा के पति भगवान है। तो बलि महाराज इस चीज को जानते थे, उनके बहुत बड़े अनुभवी थे बलि महाराज, क्योंकि प्रहलाद जी के नाती थे। और भगवान को सर्वस्व अर्पण कर दिए। बलि महाराज की जीवनी से ये शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को अनुभवी होना चाहिए, जब सब कुछ अर्पण कर दिए तो भगवान इनके पहरेदार बन गए। बलि महाराज के यहां पहरा देने लगे, रक्षक बन गए। जो भगवान से कुछ नहीं मांगता है, केवल भक्ति मांगता है, तो भगवान अपने आप को उसे प्रदान कर देते हैं। बलि महाराज ने भगवान को बांध लिया। बलि महाराज को तो भगवान बांधे वरुणपास में, लेकिन स्वयं बंध भी गए, क्योंकि उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो बलि महाराज बहुत बड़े अनुभवी थे, कहने का भाव यह है, यहां पर प्रभुपाद जी व्याख्या में लिखते हैं कि बहुत बड़े अनुभवी थे। यद्यपि हार गए थे, लेकिन फिर भी उन्हें हार की चिंता नहीं थी। वे जानते थे कि देवताओं के रक्षक भगवान है, और भगवान जिसको विजय दिलाना चाहे उसे कोई हरा नहीं सकता है। इसकी अनुभूति थी बलि महाराज को। वे शरीर, आत्मा, परमात्मा, काल को भी जानते थे। एक बार इंद्र इनके पास गए, बलि महाराज के पास, और दोनों में वार्तालाप होने लगी। तो बलि महाराज इंद्र को समझाए, देखिए मैं भी एक समय राजा था, आज आप राजा बने हुए हैं। कितने इंद्र आए और कितने इंद्र गए, सारी दुनिया काल के गाल में है। काल भगवान की इच्छा का नाम है, भगवान के आदेशानुसार काल दौड़ रहा है, काल सबके ऊपर आक्रमण करता है। आज आप जीते हुए हैं, फिर दूसरे की पारी आएगी, हो सकता है मेरी पुनः पारी आ जाए। काल के गाल में है, भगवान की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं होता। बलि महाराज इंद्र को दया आ गई, बलि महाराज की बातों को सुनकर के छोड़ दिए। फिर वहां पर युद्ध करना, मरना चाहते थे, लेकिन उनकी बुद्धि उस समय पलट गई। व्यक्ति को अनुभवी होना चाहिए, कहने का भाव यह है। जैसे हमारे स्थान के पदाधिकारी गण हैं, ये सब विभूति योग में हैं। विभूति योग समझते हैं, गीता का दसवां अध्याय पढ़िए, इसमें ये तेज है, उसमें ये तेज है, ये पदाधिकारी गण विभूति योग है। भगवान का कार्य, भगवान की सेवा में सब संलग्न है। तो जितने भी विभूति योग में है भक्तवृंद, पदाधिकारी गण, उनको अनुभवी होना चाहिए। अनुभवी मतलब जितने भी भक्तगण है उसके वे अधिकारी हैं, उनको मान सम्मान देना चाहिए, और भक्तों को भी अधिकारी को मान सम्मान देना चाहिए। बात की बात में झुझलापन नहीं आना चाहिए। अधिकारी मतलब गंभीर, हल्के दिमाग का नहीं होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति को समझना चाहिए, सोच समझ करके उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। जो अनुभवी नहीं है वो पदाधिकारी लायक नहीं है। पदाधिकारी हैं फिर भी उत्पात मचेगा, अशांति फैलेगी। अनुभवी होना चाहिए, समझना चाहिए किसी भी परिस्थिति को, और किसी भी परिस्थिति में भगवान को नहीं भूलना चाहिए। सब वैष्णव हैं, भक्त हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। भक्तों को भी कोई पदाधिकारी बोलते हैं तो सहन करना चाहिए। अधिकारी को उस भक्त की बात को समझनी चाहिए कि बात क्या है, सदव्यवहार करना चाहिए, तो आपस में प्रेम बना रहता है। मेरा कहने का भाव यह है कि व्यक्ति को अनुभवी होना चाहिए। बलि महाराज एक अनुभवी व्यक्ति थे, असुर कुल में थे, फिर भी अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण कर दिए। हम लोग प्रचार में रहते हैं, श्री प्रभुपाद जी इसमें वर्णन करते हैं कि हर व्यक्ति को हार जीत की परवाह न करके अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। प्रचार में कभी कभी हम लोगों को अपमान भी सहना पड़ता है, गाली गलौज भी लोग देते हैं, उनको सहन करना चाहिए, लेकिन प्रचार कार्य बंद नहीं करना चाहिए। असफलता मिले तो भी बंद नहीं करना चाहिए, लगे रहना चाहिए। हम लोग ऐसी परंपरा में हैं, भगवान की परंपरा में, नवाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, श्री नित्यानंद प्रभु, ये सब
आप मान को भी सहे हैं, मार को भी सहे हैं, फिर भी अंत में भक्त बना दिए हैं। अपमानित भी होना पड़ता है व्यक्ति को, लेकिन अपना कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहिए। अपना कर्तव्य का मतलब है जीव का वास्तविक कर्तव्य है भगवान के आदेशों का पालन करना, और भगवान का यही आदेश है कि जो मेरा प्रचार प्रसार करता है उससे बढ़कर के मेरा कोई प्रिय नहीं है, न होगा न होने वाला है। भगवान जारे देखा तारे करे कृष्ण उपदेश, आमार अज्ञा गुरु है या तारे यही देश, ये भगवान का आदेश है। पृथ्वी ते अक्षत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है वे मोर नाम, भारत भूमि चाहिए मानुष जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार, उपकार करना चाहिए। उपकार करना ये जीवात्मा का कर्तव्य है, यही वास्तविक धर्म है। वृत्ति माने धर्म, भगवान के आदेशों का पालन करना जीव का सबसे बड़ा धर्म है। धरती असत धर्म जो धारण किया जाता है उसे धर्म कहा जाता है। तो क्या धारण करना चाहिए? भगवान का आदेश। ये जीव का धर्म ही नहीं परम धर्म है। जैसे रामायण में भी वर्णन है, जब सती ने अपना शरीर त्याग दिया और हिमाचल पर्वत पर जाकर के जन्म ली तो नाम पार्वती पड़ा। पार्वती जी का विवाह शिव जी के साथ हुआ, तो विवाह करने के लिए राम जी ने निवेदन किया शिव जी से कि आप पार्वती जी के साथ विवाह कर लीजिए, मतलब उन्हें आदेश दिया। भगवान अपने भक्तों के साथ बहुत नम्र भाषा में बात करते हैं, आदेश दिया उन्होंने कि आप पार्वती जी के साथ विवाह कर लीजिए। तब शिव जी ने कहा, हाथ जोड़कर शिव जी ने कहा, देखिए शिव जी की वाणी, जो महान वैष्णव है, शिव जी ने कहा, सिरधरी आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, हे प्रभु आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करना ये मेरा परम धर्म है। भगवान के आदेश का पालन करना, आदेशों का पालन करना यही जीव का परम धर्म है। हम सब जीवात्मा हैं, हम सबका धर्म है भगवान के आदेशों का पालन करना। तो पालन करना चाहिए और प्रचार करना चाहिए। मान अपमान को सहते हुए हमें भगवान का प्रचार करना है, अपने कर्तव्य का पालन करना है, ये बहुत जरूरी है। देखिए लक्ष्मी जी हैं, इस प्रसंग में आया है, लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की हमेशा सेवा में संलग्न रहती है। उनका नाम लक्ष्मी है, जिनके जीवन का एक ही लक्ष्य है भगवान विष्णु की सेवा करना, चरणों को संवाहन करना, उनके आदेशों का पालन करना, उनका नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी जी सदैव अपने पति की सेवा चरण दबाती हैं। नारी के लिए विशेष शिक्षा दी गई है, ध्यान से सुनिए, माताओं के लिए बहुत अनुभवी की बात है। नारी को क्या शिक्षा दी जाती है कि पति की सेवा करनी चाहिए, चरण दबाना चाहिए। चरण दबाने का लक्ष्य क्या है? शास्त्रों में वर्णन है कि पुरुषों के चरण में शनि का निवास होता है, और नारी के जो हस्तकमल होते हैं, उनके जो हाथ होते हैं, यहां से लेकर के यहां तक अंगुलियों तक शुक्र का वास होता है। वो चरण दबाती हैं तो जो शनि है उनका प्रभाव घट जाता है और धन की बढ़ोतरी होती है। जहां शुक्र का प्रभाव होता है वहां धन बढ़ता है। ये शिक्षा दी गई, इसलिए नारी अपने पति के चरण को दबाती हैं। आज भले वो न दबाएं, उनका दुर्भाग्य है, लेकिन जो आदर्श नारी हैं, जो अपना कर्तव्य समझती हैं गृहस्थ धर्म को, वो सेवा करती हैं। चरण दबाना चाहिए, उसे धन की बढ़ोतरी होती है। वैदिक शास्त्र ये आदेश देता है, जैसे लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की चरण दबाती हैं, पार्वती जी शिव जी की चरण दबाती हैं, वैसे प्रत्येक पत्नी को भी अपने पति की चरण दबानी चाहिए, उसे धन की वृद्धि होती है। और पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो हम सब वास्तव ये व्यवहारिक धर्म है, लेकिन आध्यात्मिक धर्म में कोई पति हो या पत्नी, उसके अंदर जो जीवात्मा है वो तो आध्यात्मिक है, वो तो भगवान का अंश है, उसके पति तो भगवान है, आत्मा के पति भगवान है, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है, इसलिए आत्मा को भगवान की सेवा करनी चाहिए। और ये भी सोच लें, पति और पत्नी मान लीजिए दोनों पातिव्रत धर्म का पालन करते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं, और अगर वो भगवान की भक्ति न करें तो उसका परिणाम केवल स्वर्ग लोक है, केवल वो स्वर्ग लोक तक जाएंगे, उसका फल स्वर्ग लोक तक ही जाएगा, फिर वहां से नीचे लौटना पड़ेगा, फिर जन्म मरण के चक्र में आना पड़ेगा। इसलिए पत्नी और पति दोनों मिल करके हाथ में झोली माला लेकर भगवान का जप करेंगे तो स्वर्ग से ऊपर वैकुंठ चले जाएंगे, जहां से लौटना नहीं पड़ता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यहां बलि महाराज अपने धर्म पत्नी विंध्यावली के साथ भगवान के चरण पखारे, बलि महाराज चरण धोए, चरणोदक लिए, दोनों पति पत्नी भगवान की सेवा किए, क्योंकि जानते थे कि भगवान है, गुरु के माना करने पर भी वे उनके आदेश को ठकुरा दिए। और यहां तक कि जब वे दान करने के लिए चले तो शुक्राचार्य जी भ्रमर का रूप बना करके वो टोटी में घुस गए। विष्णु पुराण में अन्य पुराणों में भी वर्णन है, भगवान ने एक सिख से खोद दिया, उनकी आंखें फूट गई, एक वर्णन है शास्त्रों में, एक ही पुराण में सब चीज वर्णन नहीं है, अन्य पुराणों में भी वर्णन है। जो भगवान को दान देने से मना करे उसकी आंखें फूट जाए। ये फाटहू फूटहू नैन जो तन भय के ही काम, द्रवई स्रवई पुल कई नहीं तुलसी सुमिरत राम। उसका हृदय फट जाए, ये फाटहू फूटहू नैन, उसके नैन फ्यूज हो जाए, जो भगवान के चरणों में जाने में सहायता नहीं करते हैं वो किस काम के लिए। माता पिता को अनुभवी होना चाहिए। पुत्रवती जीवती जग सोई रघुपति भक्ति जासित हो, वही पुत्रवती स्त्री धन्य है जिसके बेटे और बेटी भगवान की भक्ति करते हैं। श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो बलि महाराज ने अपने जीवन में अनुभव किया कि सब कुछ भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। और प्रभुपाद जी इस भाष्य में लिखते हैं कि मनुष्य को कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु द्वारा आदेशित अपना कर्तव्य करना चाहिए, गुरु का आदेश को मना पालन करना चाहिए, लेकिन गुरु यदि भगवान की सेवा वर्जित करे तो उस आदेश को नहीं मानना चाहिए, उसे ठकुरा देना चाहिए। वैदिक सम्मत जो गुरु भगवान के आदेशों का पालन करें वैसे गुरु को चयन करना चाहिए और वैसे गुरु को मानना चाहिए, नहीं तो ऐसे बहुत से ठगवा गुरु और अंधे गुरु भर गए हैं संसार में, जो केवल अपनी पूजा कराते हैं, भगवान की पूजा नहीं कराते हैं, अपने हाईलाइट में आते हैं, सोने के सिंहासन पर चांदी के सिंहासन पर बैठते हैं, सेवा कराते हैं, अपनी पूजा कराते हैं और भगवान की पूजा नहीं कराते। गुरु शिष्य बधिर अंधकार लेखा, एक ने सुनी एक नहीं देखा। अंधे गुरु और बहरे चेले इस संसार में भरे हुए हैं। अंधा गुरु मतलब ज्ञान के मामला में अंधा, जिसको आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है, शरीर का ज्ञान नहीं है, वो अंधा गुरु है। और बहरा चेला मतलब सुनने के मामले में अंधा, गुरु जी कुछ भी कहते हैं आम को इमली तो स्वीकार कर लेता, हाँ गुरु जी इमली है। अरे आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सुनो इनका प्रवचन क्या है, वैदिक शास्त्र के आधार पर बोलते हैं कि नहीं। कोई पूरब को पश्चिम मान ले, पश्चिम को पूरब मान ले, कोई दक्षिण को पूरब मान ले, तो क्या उसकी बातों को आप मान लेंगे। ढोंगी गुरु संसार में भरे हुए हैं, वैसे गुरु के आदेशों को ठकुरा देना चाहिए। जो वैष्णव होते हैं उनसे दीक्षा लें, और वैष्णव जो गुरु होते हैं वे मर्यादा में रहते हैं, गुरु को प्रतिनिधि कहा गया है, जो भगवान के संदेश को एज इट इज समाज में प्रस्तुत करते हैं, दर्शाते हैं, वे प्रतिनिधि होते हैं। तो जो भगवान के आदेशों को समाज में प्रस्तुत करते हैं, भक्ति की बढ़ावा देते हैं, भक्ति करने का आदेश देते हैं, वैसे गुरु को भगवान जैसा सेवा करनी चाहिए, ये वैदिक आदेश है। तो बलि महाराज इस बात को समझते थे कि वास्तविक गुरु कौन है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान सबके गुरु हैं जो जगत को शिक्षा देते हैं। शुक्राचार्य जी हैं, उनके गुरु हैं, लेकिन दान देने से मना कर रहे हैं, बलि महाराज उनकी आज्ञा को नहीं माने। तो गुरु द्वारा आदेशित अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए, मतलब जो वैदिक शास्त्र के द्वारा आदेशित है वैसे गुरु को भी चयन करना चाहिए। तो हम सभी को अनुभवी होना चाहिए, प्रत्येक भक्त को। आजकल बहुत से प्रचार प्रसार हो रहे हैं, लेकिन ठगवा गुरु संसार में भरे हुए हैं। और बलि महाराज की जीवनी से शिक्षा मिलती है, जैसे बलि महाराज भगवान को अपना सर्वस्व मान लिया, सब कुछ अर्पण कर दिए, वैसे हम सभी को भी अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में अर्पण कर देना चाहिए। जैसे गीता में भगवान कहते हैं, यत् करोषि यदश नासि, यत् जिहोषि ददासि यत्, यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। हे अर्जुन, जो कुछ भी करते हो, खाते हो, पीते हो, पहले मुझे अर्पण करो। जैसे बलि महाराज ने भगवान को अपने जीवन का केंद्र माना और सब कुछ अर्पण कर दिया, वैसे हम सभी जीवों को भी भगवान को केंद्र मानकर अपना सब कुछ तन मन धन भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए और उन्हीं का स्मरण करते हुए जीवन बिताना चाहिए। इसी में मानव जीवन की सार्थकता है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। अब सब भक्त प्रचार में जाएंगे, इसलिए यहीं पर विराम दिया जाता है। प्रश्न उत्तर तो होते रहते हैं। हरे कृष्णा।